एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो है तो एक बिजनेस केस स्टडी, पर इसमें इतना ड्रामा, इतना सस्पेंस है कि क्या कहें, कोई थ्रिलर नॉवल भी शायद फीका पड़ जाए।
हाँ, सही कहा। ये कहानी है जनरल इलेक्ट्रिक की, मतलब जीई। सोचिए, एक जमाने में अमेरिका की सबसे बड़ी, सबसे सम्मानित कंपनी। शायद हमारे घरों में भी कभी जीई का बल्ब जला हो।
और वो कंपनी कैसे अर्श से फर्श पर आ गई।
बिल्कुल।
और आज हम थॉमस ग्रीटा और टेडमान की किताब लाइट्स आउट, प्राइड, डिल्यूजन एंड द फॉल ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक के जरिए इसी पतन की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे।
और ये कहानी आज इतनी जरूरी क्यों है? इसलिए नहीं कि बस एक बड़ी कंपनी डूब गई,
हाँ,
बल्कि इसलिए कि ये एक आईने की तरह है। ये दिखाती है कि कैसे बड़े ओहदों पर बैठा हुआ अहंकार, थोड़े शॉर्टकट लेने की आदत या सच से मुंह मोड़ना बड़ी से बड़ी नाव को भी डुबो सकता है।
इसमें सीखने को बहुत कुछ है ना, चाहे हम किसी भी फील्ड में हों।
बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं।
अच्छा, तो ये कहानी जिन्होंने लिखी है, थॉमस ग्रीटा और टेडमान, ये कोई बाहर बैठकर अंदाजा लगाने वाले लोग नहीं हैं।
नहीं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के, मतलब काफी अनुभवी पत्रकार हैं। इन्होंने सालों तक जीई को कवर किया है। ऐसा समझिए कि कंपनी की नब्ज इनके हाथ में थी।
हाँ, और यही बात इस किताब को खास बनाती है। इन्होंने सिर्फ प्रेस रिलीज या कंपनी के बयानों पर भरोसा नहीं किया, अंदर के लोगों से बात की, मतलब मौजूदा और पूर्व अधिकारी, बोर्ड मेंबर्स, इन्वेस्टर्स।
सही कहा, इनकी पहुंच अंदर तक थी, लेकिन नजरिया एकदम पत्रकार वाला, तथ्यों पर आधारित, बिना किसी लाग लपेट के।
उन्होंने उस चमक दमक के पीछे देखने की कोशिश की जो जीई दुनिया को दिखा रहा था,
और वो किसी एकेडमिक थ्योरी या किसी नाराज कर्मचारी के नजरिए से नहीं लिख रहे। ये सालों की खोजी पत्रकारिता का निचोड़ है। वो बस ये पता लगा रहे थे कि भाई आखिर हुआ क्या, कैसे एक इतना बड़ा आइकॉन इतनी बुरी तरह से लड़खड़ा गया।
तो किताब असल में है किस बारे में, अगर बहुत संक्षेप में कहें?
ये जीई के पतन का एक बहुत बहुत डिटेल्ड पोस्टमार्टम है। ये बताती है कि कैसे वो कंपनी जो कभी अमेरिकन इंडस्ट्री की शान थी, मैनेजमेंट का मॉडल मानी जाती थी, वो अपनी कीमत का 90% से ज्यादा गंवा बैठी, दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई।
और ये रातों रात नहीं हुआ?
नहीं, बिल्कुल नहीं। और किताब का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि जीई का गिरना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, ये सिर्फ मार्केट की उठापटक का नतीजा था।
तो फिर क्या था?
ये नतीजा था दशकों के अहंकार का, ह्यूब्रिस जिसे कहते हैं, खतरनाक किस्म की फिनेंशियल इंजीनियरिंग, मतलब आंकड़ों की बाजीगरी, एक ऐसी कॉर्पोरेट संस्कृति जो सच को छुपाती थी, और सबसे बढ़कर लीडरशिप की भयंकर गलतियां। ये एक धीमी मौत थी जिसके लक्षण पहले से दिख रहे थे, पर उन्हें नजरअंदाज किया गया।
किताब ये भी दिखाती है कि कैसे कंपनी का फोकस शानदार प्रोडक्ट बनाने से हटकर, इंजीनियरिंग इनोवेशन से हटकर, सिर्फ और सिर्फ तिमाही नतीजों और स्टॉक मार्केट में शेयर की कीमत बढ़ाने पर रह गया।
हाँ, जैसे कोई बहुत हुनरमंद कारीगर हो और वो अपना हुनर भूल जाए, बस ये सोचे कि बाजार में माल का दाम कैसे बढ़ाया जाए, चाहे जैसे भी। नतीजा, नींव कमजोर होती जाती है, भले ही बाहर से इमारत चमक रही हो।
चलिए अब जरा कहानी के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। किताब हमें जीई के अलग अलग दौर में ले जाती है, खासकर पिछले कुछ दशकों में।
हाँ, शुरुआत करते हैं जैक वेल्च के दौर से, 1981 से 2001 तक।
जैक वेल्च, सदी का मैनेजर, मैनेजर ऑफ द सेंचुरी।
बिल्कुल। उनके टाइम में जीई दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। उनके तरीके, उनके मैनेजमेंट के सिद्धांत पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते थे।
हाँ, वो हर बाजार में नंबर वन या नंबर टू बनो वाला सिद्धांत।
और वो रैंक एंड यैंक, मतलब हर साल सबसे नीचे के 10% कर्मचारियों को निकाल देना,
काफी सख्त।
हाँ, उनकी छवि थी कि वो नतीजे देते हैं बस। लेकिन किताब कहती है कि इसी सुनहरे दौर में गिरावट के बीज बो दिए गए थे।
अच्छा, कैसे?
वेल्च का सारा जोर था लगातार हर तिमाही अनुमान के मुताबिक मुनाफा दिखाने पर, प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स। और ये मुनाफा सिर्फ फैक्ट्रियों से या बढ़िया सामान बेचने से नहीं आ रहा था, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आ रहा था जीई कैपिटल से।
जी कैपिटल, उनकी फाइनेंस वाली कंपनी।
हाँ, जो धीरे धीरे एक बहुत बड़े बैंक जैसी बन गई थी, पर रेगुलेशन वैसा नहीं था और ये एक किस्म का ब्लैक बॉक्स था।
ब्लैक बॉक्स मतलब?
मतलब किसी को ठीक से पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है, कैसे पैसे बन रहे हैं। बस बाहर आंकड़े हमेशा शानदार आते थे, बहुत कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग, भारी कर्ज, इनके सहारे नंबर बनाए जा रहे थे।
ओहो, और इसी ने जन्म दिया उस सक्सेस थिएटर को।
बिल्कुल, सफलता का नाटक। सब कुछ बढ़िया दिखाना है भले ही अंदर से मामला गड़बड़ हो। मीटिंग में कोई बुरी खबर लेके आए या टारगेट मिस होने की बात करे तो उसे अच्छा नहीं माना जाता था।
ये तो खतरनाक कल्चर है।
बहुत सच्चाई से ज्यादा जरूरी हो गया था सफलता का भ्रम बनाए रखना।
फिर 2001 में वेल्च रिटायर हुए, उनकी जगह आए जेफ एमेल्ट।
हाँ, जेफ एमेल्ट, और उन्होंने कमान संभाली ठीक 9/11 हमलों से कुछ दिन पहले।
मुश्किल वक्त था।
उनका सपना तो अच्छा था शायद, वो जीई को वापस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना चाहते थे। इमेजिनेशन एट वर्क।
हाँ, इरादे नेक लगते थे। उन्होंने इको इमेजिनेशन जैसी पहल भी की, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। सुनने में सब बहुत अच्छा था,
लेकिन वो एक तरह से वेल्च की विरासत में फंस गए। वो जी कैपिटल वाली मशीन को एकदम से बंद नहीं कर सकते थे। कंपनी का स्टॉक प्राइस उसी पर टिका था। किताब कहती है कि एमेल्ट बहुत आशावादी थे, पर कई बार उनका आशावाद असलियत से आंखें चुराने जैसा बन गया।
अच्छा,
उन्होंने बड़े बड़े अधिग्रहण किए और उसमें सबसे महंगा और विनाशकारी साबित हुआ फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम के पावर बिजनेस का सौदा।
हाँ, वो 10 अरब डॉलर वाला सौदा।
हाँ, 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा, और उस वक्त किया जब पावर मार्केट एकदम पीक पर था। बाद में यही सौदा जीई के गले की फांस बन गया
और वो सक्सेस थिएटर वो चलता रहा,
बल्कि शायद और बढ़ गया। अंदर कंपनी की हालत पतली हो रही थी, कैश फ्लो कम हो रहा था, कर्ज बढ़ रहा था, लेकिन बाहर आत्मविश्वास और ताकत का पूरा दिखावा जारी था।
जैसे किसी के घर में पानी भर रहा हो और वो बालकनी में खड़े होकर मौसम की तारीफ कर रहा हो।
फिर आया 2008 का वो बड़ा संकट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस।
हाँ, वो जी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
उसने जीई कैपिटल का असली चेहरा दिखा दिया। पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ा, लगभग अनियंत्रित बैंक बन चुका है जिसके पास पर्याप्त सेफ्टी नेट नहीं है,
और कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी।
सचमुच, उसे बचाने के लिए वॉरेन बफेट से अरबों डॉलर लेने पड़े, अमेरिकी सरकार से भी इमरजेंसी लोन लेना पड़ा। जी की जो सालों पुरानी मजबूत बैलेंस शीट वाली इमेज थी, वो टूट गई।
एमेल्ट ने फिर जी कैपिटल को समेटने की कोशिश तो की होगी।
हाँ, बहुत कोशिश की, उसे छोटा किया, लेकिन नुकसान हो चुका था। तब तक बहुत देर हो गई थी, वो एल्स्टॉम वाला सौदा एक ब्लैक होल बन गया था, पैसा निगलता जा रहा था।
और पुरानी समस्याएं?
हाँ, जो सालों से कालीन के नीचे छुपाई गई थी, जैसे इंश्योरेंस बिजनेस में अरबों डॉलर की देनदारियां, वो सब अब खुलकर सामने आने लगी। और कंपनी के जो असली औद्योगिक बिजनेस थे, जैसे एविएशन इंजन बनाना, मेडिकल इक्विपमेंट बनाना, वो इतना कैश नहीं कमा पा रहे थे कि इन सब गड्ढों को भर सकें।
इसके बाद तो फिर पतन तेज हो गया होगा।
हाँ, पतझड़ आ गया, स्टॉक प्राइस गिरता ही रहा। फिर मैदान में आए नेल्सन पेल्ट्स, एक एक्टिविस्ट इन्वेस्टर।
एक्टिविस्ट इन्वेस्टर
जो कंपनी में हिस्सा खरीद कर मैनेजमेंट पर दबाव डालते हैं। उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, करीब 1 साल, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने आते ही वो किया जो शायद बहुत पहले होना चाहिए था, सच बोलना शुरू किया।
अच्छा।
उन्होंने बताया कि कंपनी की हालत कितनी खस्ता है, कैश का कितना संकट है, पावर डिवीजन कैसे डूब रहा है, इंश्योरेंस में कितना बड़ा टाइम बॉम्ब है। उन्होंने डिविडेंड आधा कर दिया।
वाओ।
जी जैसी कंपनी के लिए सोचना भी मुश्किल था।
लेकिन ये सच बोलना महंगा पड़ा उन्हें?
लगता तो यही है, बोर्ड को शायद पसंद नहीं आया या लगा कि फ्लैनरी बहुत धीमे है। 1 साल बाद उन्हें भी हटा दिया गया।
फिर
2018 के अंत में जी के 126 साल के इतिहास में पहली बार कोई बाहरी व्यक्ति सीईओ बना, लैरी कल्प।
लैरी कल्प?
हाँ, कल्प ने आते ही दिखावा बंद किया, कड़वी सच्चाई मानी और कड़े फैसले लिए। तेजी से कंपनी की संपत्तियां बेची, कर्ज चुकाया, डिविडेंड को घटाकर लगभग शून्य कर दिया।
और अंत में
उन्होंने उस महान जी साम्राज्य को 3 अलग-अलग स्वतंत्र कंपनियों में तोड़ने का ऐलान कर दिया।
वाओ।
एविएशन, हेल्थ केयर और एनर्जी। वो जी जिसे दुनिया जानती थी, वो अब इतिहास बन चुकी है।
उफ, क्या कहानी है। मतलब जबरदस्त उतार चढ़ाव और इससे सबक तो बहुत गहरे मिलते हैं।
हाँ, कई सारे। कुछ मुख्य विषयों पर बात करते हैं जो इस किताब से साफ उभरते हैं।
पहला तो शायद वही वित्तीय इंजीनियरिंग बनाम असली कारोबार वाली बात।
बिल्कुल जी, धीरे धीरे चीजें बनाने, नई टेक्नोलॉजी लाने के बजाय नंबर बनाने वाली कंपनी बन गई।
ये
फोकस प्रोडक्ट और ग्राहक से हटकर सिर्फ तिमाही नतीजों और स्टॉक प्राइस पर चला गया।
जैसे कोई छात्र सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने पर ध्यान दे, सीखने पर नहीं।
हाँ, सही मिसाल है। बाहर से टॉप पर, अंदर से नींव खोखली। जी के साथ यही हुआ था।
हाँ, उनके तरीकों पर सवाल उठाना मुश्किल हो गया था। फिर मेल्च आए, जो शायद वेल्च की छाया और अपने ही आशावाद के बोझ तले दबे रहे। ये दिखाता है कि जब लीडर बहुत ज्यादा करिश्माई या ताकतवर हो जाता है
तो
मुश्किल सवाल पूछे नहीं जाते, सच पीछे छूट जाता है।
हाँ, और ऐसा सिर्फ बड़ी कंपनियों में नहीं होता, हम अपने आसपास भी ये देख सकते हैं ना।
बिल्कुल। तीसरा, और ये मुझे बहुत डरावना लगता है, सक्सेस थिएटर संस्कृति का कैंसर। मतलब एक ऐसा माहौल जहां बुरी खबर सुनाना या गलती मानना गुनाह है, जहां हमेशा सब बढ़िया है दिखाने का दबाव हो।
इससे होता क्या है?
समस्याएं अंदर ही अंदर पनपती रहती हैं, जैसे दीमक।
और जब तक पता चलता है
तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये किसी भी टीम, किसी भी संगठन के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। पारदर्शिता, खुलकर बात करने का माहौल, ये बहुत जरूरी है।
चौथा सबक जुड़ा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नाकामी से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी।
हाँ, उनकी जिम्मेदारी है मैनेजमेंट पर नजर रखना, शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा करना। लेकिन किताब बताती है कि जी का बोर्ड कई सालों तक सीईओ के सामने कमजोर रहा।
मतलब रबर स्टैम्प जैसा।
हाँ, कह सकते हैं। मुश्किल सवाल पूछने या फैसलों को चुनौती देने के बजाय अक्सर हाँ में हाँ मिलाते रहे। वो निगरानी करने वाले कम, चीयरलीडर ज्यादा बन गए थे।
ये चेक और बैलेंस के महत्व को दिखाता है।
बिल्कुल। और पांचवा सबक है शॉर्ट टर्म सोच का खतरा, छोटी अवधि की सोच।
हर तीन महीने में वॉल स्ट्रीट को खुश करने का दबाव, तिमाही नतीजों का जुनून।
हाँ, और इस चक्कर में जी ने कई ऐसे फैसले लिए जो लंबे समय में कंपनी के लिए बहुत खराब साबित हुए।
जैसे वो एल्स्टॉम सौदा।
हाँ, गलत समय पर महंगा सौदा, या शायद रिसर्च और डेवलपमेंट पर उतना ध्यान न देना जितना देना चाहिए था। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जैसा है।
कैसे?
हम अक्सर तुरंत फायदा देखकर कोई शॉर्टकट ले लेते हैं जो बाद में महंगा पड़ता है। दूर की सोचना हमेशा ज्यादा टिकाऊ होता है।
सही कहा। किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो बार बार आती हैं, कुछ यादगार कथन या विचार।
हाँ, कुछ ऐसी लाइनें हैं जो जीई की कहानी का सार पकड़ती हैं।
जैसे
एक है, जीई एक ऐसी कंपनी बन गई थी जो कारोबार चलाने के बजाय नतीजों का प्रबंधन करती थी।
मतलब असली काम छोड़कर सिर्फ आंकड़ों की बाजी करी।
हाँ, और इसी से जुड़ी एक और बात, कंपनी को अपने नंबर बनाने की लत लग गई थी, चाहे किसी भी तरह से हो।
लत नशे की तरह।
बिल्कुल। एक बार आप आंकड़ों को मैनेज करने लगते हैं तो अगली बार और बेहतर दिखाने के लिए और बड़े जुगाड़ करने पड़ते हैं। ये एक जाल बन जाता है।
एक और था शायद, जटिलता को लेकर।
हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी एक खामी नहीं बल्कि एक विशेषता बन गई थी, समस्याओं को हल करने के बजाय छिपाने का एक तरीका।
ओहो, मतलब कंपनी का स्ट्रक्चर, अकाउंटिंग इतनी पेचीदा बना दो कि कोई समझ ही ना पाए कि चल क्या रहा है।
हाँ, और शायद यही मकसद था, जटिलता के पर्दे के पीछे जवाबदेही से बचना।
और वो इंजीनियरिंग वाली बात।
हाँ, वो शायद सबसे दुखद है। उन्होंने वित्तीय इंजीनियरिंग को वास्तविक इंजीनियरिंग समझ लिया था। जी की पहचान उसकी इंजीनियरिंग, उसकी इनोवेशन से थी, पर वो अपनी असली ताकत भूल गए और फाइनेंस की बाजीगरी को ही सबसे बड़ा हुनर मानने लगे।
और बोर्ड के लिए भी एक लाइन थी।
हाँ, बोर्ड निगरानी करने वालों के बजाय चीयरलीडर्स बन गया था। ये सीधे सीधे गवर्नेंस की नाकामी बताता है।
तो ये तो हुई कहानी और उसके गहरे सबक। अब सवाल ये है कि इस कहानी से अपनी जिंदगी में, अपने काम में क्या सीखा जा सकता है।
निवेशकों के लिए तो सीधा सबक है, सिर्फ कंपनी के बड़े नाम या सीईओ की शोहरत पर ना जाएं। कंपनी सच में कितना कैश कमा रही है, उसका कैश फ्लो कैसा है, उसकी कमाई कितनी टिकाऊ है, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोई कंपनी हर बार, हर तिमाही परफेक्ट नतीजे दिखा रही है तो थोड़ा शक करना बनता है।
सही है। और जो लोग लीडरशिप रोल में हैं उनके लिए?
उनके लिए सबक है, अपने ही प्रचार पर, अपनी ही हाइप पर यकीन करने के खतरे से बचें। टीम में ऐसा माहौल बनाएं जहां लोग बिना डरे सच बोल सकें, बुरी खबर भी ला सकें, गलतियां मान सकें, ताकि उन पर समय रहते काम हो।
पारदर्शिता।
हाँ, पारदर्शिता। और छोटी अवधि के लक्ष्यों के साथ साथ लंबी अवधि में संगठन की सेहत पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। चीजों को सरल रखें।
और हम जैसे आम लोगों के लिए भी इसमें कुछ है?
मुझे लगता है बिल्कुल है। चाहे आप अपना छोटा मोटा काम करते हो या घर चला रहे हो, बुनियादी उसूलों पर टिके रहना, ईमानदारी बरतना, सच्चाई का सामना करना, यह हमेशा काम आता है। सिर्फ बाहर से अच्छा दिखने या अपनी इमेज बनाने पर सारा ध्यान लगा देना, जैसा जी ने किया, वो अक्सर महंगा पड़ सकता है।
तो इस उरी चर्चा के अंत में आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे, सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि कैसे एक इतनी बड़ी, इतनी पुरानी और इतनी सम्मानित कंपनी, जिसे मैनेजमेंट का मक्का माना जाता था, वो अपनी ही बनाई हुई संस्कृति, अपने ही अहंकार और शॉर्ट टर्म सोच के जाल में फंसकर इतनी बुरी तरह बिखर सकती है। वो जो सक्सेस थिएटर वाली बात है ना, वो वाकई डराती है। ये दिखाता है कि किसी संगठन की संस्कृति उसकी रणनीति से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है, अच्छी भी और बुरी भी।
और आपके लिए?
मेरे लिए ये कहानी इस बात को बहुत गहराई से दिखाती है कि लीडरशिप के फैसले, कंपनी की संस्कृति, गवर्नेंस, इन सबका सीधा असर पड़ता है, न सिर्फ कंपनी के भविष्य पर, बल्कि उसके कर्मचारियों पर, उनके परिवारों पर, पेंशन भोगियों पर, ग्राहकों पर, यहाँ तक कि पूरे समुदायों पर। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है।
हाँ।
इसके पीछे जीते जागते इंसान होते हैं। ये कहानी हमें जवाबदेही और सफलता कितनी नाजुक हो सकती है, इसका एक बहुत शक्तिशाली पाठ पढ़ाती है। शायद अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने आसपास, हमारे काम की जगहों पर या जिन सिस्टम्स का हम हिस्सा हैं, उनमें कहीं सक्सेस थिएटर या बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म फोकस के ऐसे ही छोटे छोटे संकेत तो नहीं दिख रहे जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।